नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, सरकार शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर काम कर रही। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा। उधम सिंह नगर जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 4 मदरसों को सील किया। और नैनीताल जिले में गोवंशी पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने सघन अभियान शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान से उत्तराखंड राज्य गठन के सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि मसूरी की धरती उत्तराखंड के संघर्ष और बलिदान की साक्षी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है।
ये उत्तराखंड राज्य हमको बहुत संघर्षों से मिला है, आसानी से नहीं मिला है। इसलिए हमारे लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उन्हें क्या कि अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मेरी बहनों, राज्य आंदोलन में हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं अपनी मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने लाठियां खाई लेकिन कभी संकल्पों से पीछे नहीं हटी। इसलिए आज अमर बलिदानी बेलवती चौहान जी और हंसा धनाई जी भाई भाई बहनों, हमारे लिए आंदोलन कार्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि वो उत्तराखंड की पहचान है, हमारे गौरव के आधार है। इसलिए उनके सम्मान और अधिकारों को सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। इसी भावना के साथ राज्य आंदोलनकारियों उनके आस्तों को सम्मान देने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान प्रत्येक उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। श्री धामी ने कहा कि नई पीढ़ी को भी राज्य निर्माण के संघर्ष से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में मातृशक्ति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी माताओं बहनों ने अपने संघर्ष और सहभागिता से आंदोलन को मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की पहचान और गौरव के आधार हैं। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चमोली जिले स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जन्माष्टमी पर बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा और आरती की जाएगी। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा 15 सितंबर से फिर शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और पहली टिकट बुकिंग विंडो 7 सितंबर से खोलने की तैयारी की जा रही है। UCADA के अनुसार टिकटों की कालाबाजारी रोकने और बुकिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए दूसरे चरण में टिकट 15-15 दिन की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। UCADA ने कहा कि हेली सेवा का संचालन मौसम की स्थिति, सुरक्षा मानकों और DGCA की अनुमति के अनुरूप ही किया जाएगा। प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं से केवल अधिकृत माध्यम से टिकट बुक करने की अपील की। वर्ष 2026-27 में आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश के लिए पौड़ी जिले में गढ़वाल में विभिन्न खेलों के लिए 9 व 10 सितंबर को जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। जिला खेल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स का आयोजन रांची स्टेडियम पौड़ी में किया जाएगा। इसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, वॉलीबॉल व क्रिकेट खेलों के लिए बालक बालिकाएं प्रतिभाग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की आयु 1 जुलाई 2026 को 12 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में संचालित व प्रस्तावित विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को रोपवे परियोजनाओं में पार्किंग डेवलपमेंट को अनिवार्य रूप से शामिल करने को कहा, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी प्रदेश की पर्यटन व यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए सभी परियोजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य किया जाए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश में बिना आवश्यक मान्यता व दस्तावेजों के संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर परगना क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे 4 मदरसों को सील कर दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह और कोतवाली निरीक्षक नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार संबंधित मदरसा संचालक निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि उत्तराखंड अल्प शिक्षा अधिनियम बनने के बाद राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के जरिए मान्यता की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 452 मदरसे हैं, इनमें से 200 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। जिन मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है उन्हें आवेदन करने के लिए कहा गया है, और जो मदरसे बिना आवेदन के संचालित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में 452 पंजीकृत मदरसे हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम यहां पारित हो चुका है। मदरसा बोर्ड 30 जून 2026 से बंद हो चुका है। तो जो भी मदरसे यहां उत्तराखंड में संचालित हो रहे थे उनको पुनः शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करनी थी, और साथ ही में अल्पसंख्यकों की जो मान्यता है उसको प्राप्त करने के लिए जो है अल्पसंख्यक प्राधिकरण से उनको मान्यता लेनी थी। जिन जिन मदरसों ने अप्लाई किया है उनकी कार्रवाई चल रही है, और जिन मदरसों ने इसमें अप्लाई नहीं किया है उनकी नोटिस देते हुए नियमानुसार जो है उनकी बंदी और क्लोजर की कार्रवाई भी जो है चल रही है।
नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लंपी वायरस के संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग ने गोवंशी पशुओं में लंपी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने सघन अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत जिले भर में 163 टीमों का गठन किया गया है। राजकीय पशु चिकित्सक के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. आर. के. पाठक ने बताया कि विभागीय टीमें लगातार गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं।
जो लंपी रोग है इसके कुछ केसेस हल्द्वानी विकास खंड के साथ साथ बगल के जो विकास खंड है हमारे उनमें पाए गए थे कुछ केसेस, और विभाग ने त्वरित एक्शन लेते हुए इसकी सैंपलिंग कराई और उसके बाद हमने टीकाकरण का कार्य तुरंत, जैसे दो हमारे ईपी सेंटर घोषित हुए तो तुरंत उसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर राजीव सिंह के द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि इसमें आप तुरंत टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ करें, और हमने अपने पशु चिकित्सालय में 10 टीमें बनाई है और विकास खंड स्तर पे भी करीब 20 से 22 टीमें वर्क कर रही हैं, और पूरे जनपद में जहां तक मुझे जानकारी है कि 163 के आसपास की टीमें लगातार पूरे क्षेत्र में जाके टीकाकरण कर रही है।
बाहरी राज्यों और अन्य स्थानों से महिषवंशी और गौवंशी पशुओं के परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने पशुपालकों से पशु में लंपी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय या विभागीय टीम को सूचना देने की अपील की है। और एक नज़र मौसम पर, प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान के अनुसार 2 सितंबर को देहरादून समेत नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 7 सितंबर तक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, सरकार शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर काम कर रही। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा। उधम सिंह नगर जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 4 मदरसों को सील किया। और नैनीताल जिले में गोवंशी पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने सघन अभियान शुरू किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।